9 छोटे छोटे ताजमहल। विचार तत्व को खोजने की उतावली में कहानी को समग्रतः ग्रहण करने की प्रतिज्ञा भूल न जाए, इस पर आज के कहानीकार भी सतर्क हैं। मसलन राजेंद्र यादव का कहना है कि एक ओर तो आज के कहानीकार का सत्य या आइडिया इतना कटाछटा और स्वयं संपूर्ण नहीं है, दूसरे शेष सभी कुछ आइडिया को घटित करने के लिए निमित्त भर हो, यह उसे स्वीकार्य नहीं है। कोई भी आइडिया, विचार या सत्य व्यक्ति या पात्र के जीवन की धारा में रहते हुए ही उसकी उपलब्धि बने, उसका प्रयत्न यह है। जीवन धारा में रहते हुए ही सत्य को उपलब्ध करना सचमुच बहुत बड़ा प्रयत्न है। यदि किसी कहानी में संपूर्ण संश्लिष्ट प्रक्रिया के साथ सत्य की अभिव्यंजना होती है, तो उस कहानी की पूरी प्रक्रिया से गुजरना पाठक के लिए भी अनिवार्य है, बल्कि पाठक के लिए तो यह सुखद अनिवार्यता है। यदि किसी कहानी का पात्र के साथ उनके विविध अनुभव मार्गों से गुजरने का अवसर न मिला, तो फिर कहानी में क्या मिला? कोई भी दूसरी चीज इस अनुभव यात्रा की जगह नहीं ले सकती, इसलिए यह जटिल या लंबी अनुभव यात्रा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि इसके अंत में मिलने वाला सत्य। बल्कि कभी कभी यदि अंत तक जाते जाते कोई सत्य न मिले, तो भी यह अनुभव यात्रा अपने आप में एक सत्य की उपलब्धि मानी जा सकती है, निमित्त मात्र यहाँ कुछ भी नहीं है। यदि और भी आगे बढ़कर कहें तो ऐसी कोई भी कथाकृत किसी व्यक्ति की अपनी अनुभव यात्रा को सरल या संक्षिप्त नहीं कर सकती है, जगह लेना तो दरकिनार। फिर भी यह तथ्य है कि कहानी एक कलाकृति है, कलाकृति अर्थात अपने आप में संपूर्ण एक अनुभव खंड, निसंदेह एक कल्पित रचित या कलात्मक अनुभव खंड। यदि इस कलात्मक अनुभव खंड को सार्थक या मूल्यवान होना है, तो जीवन प्रक्रिया किसी अराजकता एवं अव्यवस्था कहानी की रचना प्रक्रिया में नहीं चल सकती। वर्तमान जीवन की अराजकता, अव्यवस्था, निरुद्देश्यता आदि के नाम पर किसी कथाकृति में इन तत्वों की हिमायती कला धर्म का परित्याग है। फिर भी जब कुछ कहानीकारों की ओर से ऐसी युक्तियां सामने आती हैं, तो उनके प्रक्रिया संबंधी आग्रह पर संदेह पैदा हो जाता है। कहीं इस प्रक्रिया प्रेम के पीछे कोई बहुत बड़ी कलात्मक कमजोरी तो नहीं छिपाई जा रही है? सत्य की उपलब्धि की अपेक्षा उपलब्ध करने की प्रक्रिया पर आखिर इतना जोर क्यों? रास्ते के प्रति यह अतिरिक्त प्रेम है या मंजिल से अतिरिक्त भय? एक गलती की प्रतिक्रिया में कहीं दूसरी गलती तो नहीं हो रही है? यदि पहले की कहानियों ने विचार से आरंभ करके गलती की, तो कहीं ऐसा न हो कि आज की कहानी अनुभव प्रक्रिया में ही भटक कर रह जाए, कहीं ऐसा न हो कि आए तो हरिभजन को ओटन लगे कपास। आशंका नितांत कल्पित नहीं है। इसकी पुष्टि होती है जब राजेंद्र यादव कहते हैं कि कहानी के कलेवर में एक केंद्रीय भाव को फोकस करते समय कथाकार के लिए यह छांटना बड़ी मुश्किल हो जाता है कि क्या रखे और क्या छोड़ दे। सभी तत्व तो एक दूसरे से गुथे हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस धर्म संकट को समझने के लिए जब हम इस ठोस कहानियों पर दृष्टि डालते हैं, तो पता चलता है कि सारा धर्म संकट केवल कुछ निजी और काव्यात्मक अनुभूतियों को लेकर उठ खड़ा हुआ है। कुछ ऐसी अनुभूतियां हैं जिन्हें छोड़ने में कहानीकार का हृदय फटता है, क्योंकि उन अनुभूत चित्रों के बिना कोरी कोरी कहानी कहने में क्या मजा। और कभी कभी तो उन अनुभूतियों को छोड़ने की समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी यह कि किस तरह उन्हें बटोर लिया जाए। इसके लिए भी कभी कभी कहानी को इधर उधर थोड़ा घुमा भी दिया जाता है, कथानक को कहीं से मोड़ या रोक दिया जाता है और कुछ विशिष्ट अनुभूतियों के चित्रण के लिए जगह कर ली जाती है। यदि महाकाल का दर्शन करने के लिए मेघदूत का पंथ वक्र किया जा सकता है, तो आज का कहानीकार कोई वक्र पंथ क्यों नहीं अपना सकता? हिमालय की अलका तक पहुंचने का क्या भरोसा? भरोसा यदि हो भी तो क्या रास्ते की दूसरी अलकाएं कुछ कम हैं? कविता के पाठक भी क्या कहेंगे कि कहानी में कविता नहीं मिली? आखिर कहानी में दूसरों की कविताएं कब तक उद्धृत की जाएंगी? और अब जबकि कविताएं भी गद्यात्मक लिखी जा रही हों, तो उन्हें कहानी में उद्धृत करने में क्या मजा? फिर कहानी के अंदर गद्य में ही कविता न लिख दी जाए, अनुभूति क्षण तो वही है ना? यहाँ तो उन अनुभूत क्षणों को पूरे ब्यौरे के साथ नाटकीय रूप देने की स्वतंत्रता भी अधिक है। झक मारे नए कवि। कवि शमशेर ने तो नए कवियों को चेतावनी देते हुए कह भी दिया कि कविता में आज जो तत्व हम खोजते हैं वह अक्सर कहानी, स्केच और उपन्यास के भावुक और गहरे स्थलों में सहज ही मिल जाता है। मतलब वह कि कवियों सावधान, तुम्हारे पाठक कहानियों की ओर गए। मैं जानता हूं कि कुछ कहानीकार इस क्षेत्रापहरण प्रहरण के विरुद्ध हैं। क्षेत्रापहरण के विरुद्ध हैं और पूर्व निर्धारित सीमा का नक्शा दिखाकर हवा में लाठियां भांज रहे हैं, लेकिन उनके भाई बंद दूसरे कहानीकार गर्व के साथ इसे अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। मसलन राजेंद्र यादव का कहना है कि थीम को अधिक से अधिक यथार्थ ग्राही प्रभावशील बनाने के लिए कहानी ने नहीं कविता की वातावरण निर्माण क्षमता ले ली है। तो कहीं संगीत की सूक्ष्म लयात्मकता, कहीं चित्रकला के घुले मिले बिंब और प्रतीक लिए हैं, तो कहीं स्थापत्य की संतुलित घनता। ऐसी स्थिति में सवाल यह नहीं रहता कि सैद्धांतिक दृष्टि से यह सर्वग्रहण उचित है या अनुचित। सवाल यह है कि एक साथ इतनी कलाओं का कौशल लेकर कहानी ने क्या कर दिखाया। सवाल है कि इतने कौशल में थीम अधिक से अधिक यथार्थग्राही एवं प्रभावशाली हुआ या नहीं। निर्णय व्यावहारिक धरातल पर ही संभव है, और चूंकि दावा सबसे अधिक राजेंद्र यादव का ही है, इसलिए बेहतर है कि उन्हीं की एक कहानी ली जाए। और बात चूंकि अनेक ललित कलाओं की आ पड़ी है, इसलिए संभावनाओं की दृष्टि से उनकी कहानी छोटे छोटे ताजमहल ही लें। कथानक संक्षेप में कहानी के पहले पैराग्राफ में ही आ गया है और इस प्रकार स्पष्ट है कि कथानक कितना छोटा है, अथच गौण। यह बात न मीरा ने उठाई न खुद उसने। मिलने से पहले जरूर दोनों को लगा कि कोई बहुत जरूरी बात है जिस पर दोनों को बातें कर लेनी है, लेकिन जैसे हर क्षण उसी बात की आशंका में उसे टालते रहे। बात गले तक आकर रह गई कि एक बार वह फिर मीरा से पूछे कि क्या इस परिचय को स्थायी रूप नहीं दिया जा सकता, लेकिन कहीं पहले की तरह फिर उसे बुरा लगा तो। उसके बाद दोनों में कितना खिंचाव और दुराव आ गया था। कहानी इसी खिंचाव और दुराव के क्षण की है। आरंभिक कथासार से भी स्पष्ट है कि इतने संक्षेप में भी काफी कुतूहल है, और कुतूहल पूर्ण कथानक अच्छा माना जाता है, लेकिन कथानक इकहरा ही रहा तो क्या हुआ। लिहाजा कथानक को सघन बनाने के लिए कहानी के अंदर एक दूसरी कहानी भी बूंदी गई। जादू की छड़ी स्मृत तो है ही। वर्षों पहले उसी स्थान पर एक घटी हुई घटना का याद आना स्वाभाविक ही है, खास तौर से जबकि कोई स्वयं उसका साक्षी भी रह चुका हो। निश्चय करके आने पर भी विजय ने मीरा से इसलिए विवाह का प्रस्ताव नहीं किया कि उसने अपनी आंखों से एक सप्तवर्षीय वैवाहिक यौवन को विच्छिन्न होते देखा था। एक कहानी का कारण दूसरी कहानी से स्पष्ट कर दिया गया। इस प्रकार विजय और मीरा एक दोपहर को ताजमहल की छाया में मिले और लगभग बिना बात किए लौट आए। कहानी का अंतिम पैराग्राफ लगा जैसे कोई मूर्ता क्षण है जिसका एक सिरा मीरा पकड़े है और दूसरा वह, और उसे चुपचाप दोनों रात के सन्नाटे में कहीं दफनाने के लिए जा रहे हों। डरते हों कि किसी की निगाहें न पड़ जाएं, कोई जान न ले कि वे हत्यारे हैं, कहीं किसी झाड़ी के पीछे इस लाश को फेंक देंगे और खूबसूरत खुशबूदार रुमालों से कसकर खून पोंछते हुए चले जाएंगे, भीड़ में खो जाएंगे। जैसे एक दूसरे की ओर देखने में डर लगता है, कहीं आरोप करती आंखें हत्या स्वीकार को मजबूर न कर दें। बाहर वे दोनों तांगा लेंगे, झटके से मोड़ लेता हुआ तांगा ढाल पर दौड़ पड़ेगा और ताजमहल पीछे छूटता जाएगा, और फिर अच्छा कहकर सूखे होठों के मरे स्वर पर मुस्कुराहट का कफन लपेट कर दोनों एक दूसरे से विदा ले लेंगे। इस तरह ताजमहल की छाया में एक दूसरा छोटा सा ताजमहल बना जिस पर मुस्कुराहट की सफेदी है लेकिन नीचे एक मुर्दा क्षण या प्रेम। स्पष्ट ही इस कौशल से कहानी प्रतीकात्मक भी हो गई, लेकिन क्या इतने से ही ताजमहल का पूरा पूरा उपयोग कहानी में हो गया। कुछ और निकट जाने पर पता चलता है कि अभी तो और भी अनेक छोटे छोटे ताजमहल हैं। विजय और मीरा स्वयं भी क्या छोटे छोटे ताजमहल नहीं हैं? फिर इस तरह के विजय और मीरा भी क्या अनेक नहीं हैं? हिसाब लगाइए तो कितने हुए छोटे छोटे ताजमहल। इनके अलावा मीरा के चश्मे के शीशों में भी छोटे छोटे ताजमहल हैं, और हौज में आसमानी चार्जेट के पीछे से झांकने वाला ताज है सो अलग। कहानी क्या है कि शीश महल जिसके हर शब्द में अक्ष के मानिंद एक एक छोटा ताजमहल बैठा है। इतनी प्रतीक योजना से भी यदि भावुकता की सृष्टि न होगी तो कब होगी? लेकिन कहानी का अंतर्गठन इतने से भी यथेष्ट सघन नहीं हुआ, इसलिए अनुभूतिपूर्ण क्षणों का चित्रण कौन नहीं जानता कि दो के बीच वाले मौन अनुभूत चित्रण के लिए अपार संभावना है। विजय कभी मीरा की अंगुली अपनी अंगुली में हुक की तरह लटका लेता है, कभी हाथ उठाकर दोनों हथेलियों में दबा लेता है, कभी उसकी खुली गर्दन पर चढ़ते हुए बड़ी बड़ी मूछों वाले कीड़े को कैरम के स्ट्राइकर की तरह मारकर झटक देता है। फिर उसकी दोनों कनपटियों को हथेलियों से दबाकर अपने पास खींच लेता है। तब मीरा मुस्कुराती है और विजय का मन होता है कि रेगिस्तान में भटकते प्यासे की तरह दोनों हाथों से सुराही को पकड़कर इस मुस्कुराहट की शराब को पागल आवेग में पीता चला जाए गट गट, और आंखें लड़खड़ा कर गिर पड़े। जो विवाह का प्रस्ताव लेकर आया है उसने यह सब नहीं किया तो क्या किया, और वह भी दोपहर को ताजमहल की छाया में जबकि नितांत एकांत है। इतनी बातों से यदि थीम अधिक से अधिक अर्थ यथार्थ ग्राही एवं प्रभावशील न हो तो कोई क्या करे, लेकिन सवाल यह है कि वह थीम क्या है? विवाह न करने की व्यवस्था या एक प्रेम की हत्या, अथवा ताज की छाया में गुजरे हुए मुर्दा क्षण की अनुभूत? लेकिन इस सत्य की उपलब्धि की प्रक्रिया क्या है? विजय और मीरा विवाह करने का साहस जो नहीं जुटा पाते तो क्यों? वह कौन सी अनुभव प्रक्रिया है जिसकी जटिलता से गुजरते हुए वे इस निर्णय पर पहुंचे अथवा निर्णय लेने में असमर्थ रहे? कहानी में उस जटिल अनुभव प्रक्रिया का चित्रण कहाँ है? ताजमहल के वातावरण का जो इतना विशद काव्यात्मक चित्रण किया गया है, क्या वही अनुभव प्रक्रिया सत्य और सोपान पंक्ति है? लेकिन कैसे? पाठक उस स्थिति की जटिलता का ब्यौरा जानना चाहता है जिसके कारण प्रेम की परिणति स्थायी संबंध में न हो सकी, लेकिन कहानी में उस स्थिति का चित्रण नहीं है। ऐसा लगता है कि लेखक उस स्थिति की गहराई में नहीं जा सका। जिस प्रकार कहानी के चरित्रों में प्रेम संबंध को स्थायी रूप देने का साहस नहीं है, उसी तरह उनमें संपूर्ण स्थिति की छानबीन करने का साहस की भी कमी है। इसे चरित्रों की नैतिक कमजोरी कह सकते हैं, और अंततः यह लेखक की नैतिक कमजोरी को सूचित करती है। कहानी से स्पष्ट है कि उसके चरित्र संबंध टूटने की कल्पना या घटना से इतने अभिभूत हैं कि उस पर भावुकतापूर्ण ढंग से सोचने लगते हैं। वे एक दुखद घटना के प्रभाव में जी रहे हैं, कारण में जाने की क्षमता नहीं रखते हैं। इस भावुकतापूर्ण अनचिंतन का ही परिणाम है कि वे उस प्रेम की कल्पना मुर्दा के रूप में करते हैं और उसके लिए ताजमहल के रोमांटिक प्रतीक की सृष्टि करते हैं। स्पष्टतः यह प्रतीक संपूर्ण थीम को एक भावुकतापूर्ण रंग प्रदान करता है। इससे स्थिति की गंभीरता का एहसास नहीं होता, बल्कि एक भावुकता की सृष्टि होती है। लेखक एक अनुभूति के वर्तमान क्षण में कैद हो जाता है और कहानी कमजोर हो जाती है। क्या ऐसा नहीं है कि अनेक छोटे छोटे ताजमहलों में मुग्ध हो जाने के कारण मूल ताजमहल कहानी में आने से रह गया? मूल ताजमहल अर्थात मुख्य थीम प्रसंगात कहानी में एक जगह यह सत्य उघड़ गया है। बातों के बीच वह उसे कई बार भूल गया था, लेकिन दांतों में अटके तिनके सा अचानक उसे याद आ जाता था कि वे उसकी छाया में बैठे हैं, जो महान हैं, विराट हैं, जो इतनी बड़ी इमारत। इसके समग्र सौंदर्य को एक साथ वह कभी कल्पना में ला ही नहीं पाया। एक एक हिस्सा देखने में कभी उसमें कुछ सुंदर लगा नहीं। लोगों के अपने ही मन का काव्य और सौंदर्य होगा जो इसमें आरोपित करके देख लेते हैं। कभी मौका मिलेगा तो वह हवाई जहाज से ताज की सुंदरता के समग्र को पाने की कोशिश करेगा। कई विहंगम चित्र इस तरह के देखे हैं और तब सारे वातावरण के बीच कोई बात लगी तो है, मगर इस चश्मे के कांचों में झलमलाते धूप में चमकते छोटे छोटे ताज। आंख के चश्मे वाले इन छोटे छोटे ताजमहलों का ही दूरनिवार आकर्षण है जो एक कहानीकार को विराट ताज से दूर रखे हुए है और वह विराट तथा महान को अपनी कल्पना में लाने में असमर्थ हो रहा है। क्या आज की बहुत सी कहानियां ऐसे ही छोटे छोटे ताजमहल नहीं हैं? सुंदर सुघड़ कलापूर्ण, लेकिन क्यों? रेगिस्तान में भटकते प्यासे की तरह दोनों हाथों से सुराही को पकड़कर इस अनुभूत की शराब को पागल आवेग में गट गट पीते जाने और लड़खड़ा कर गिर पड़ने का क्या मतलब है? साधारण पाठक तो अनुभूतियों के वर्णन से अभिभूत हो जाता है, इतना अभिभूत कि इन अनुभूतियों के पीछे छिपे हुए दृष्टिकोण की ओर ध्यान ही नहीं दे पाता। लेकिन इसके पीछे क्या कोई मुर्दा भोगवाद नहीं है? अमरीकी साहित्य समीक्षक फिलिप रायो ने कुछ दिन पहले अमेरिकी कथा साहित्य में बढ़ते हुए अनुभूतिवादी खतरे के पीछे छिपी विचारधारा का निर्मम उद्घाटन किया था। क्या हमारे यहाँ भी उसी प्रकार का कट ऑफ एक्सपीरियंस नहीं बढ़ रहा है? कल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। वैयक्तिक संबंधों की बारीकियों में इतनी दिलचस्पी और नितांत निजी अनुभूतियों के छोटे छोटे क्षणों का ब्यौरा देने में ऐसी रुचि अंततः किस ओर ले जाएगी? बोस्टन सोसाइटी के बारे में टीएस इलियट ने एक बार कहा था कि दे आर क्वाइट रिफाइंड बट रिफाइंड बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सिविलाइजेशन। क्या इन कहानियों की अति सूक्ष्मता प्रियता भी सभ्यता की हद के पार तो नहीं जा रही है? अत्यंत सभ्य लेकिन सभ्यता की हद के पार, ऊपर से सुंदर लेकिन नीचे प्राणहीन सौ छोटे छोटे ताजमहल।